एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतरने वाले हैं जो दिखती तो नहीं पर हमारी डिजिटल जिंदगी की, आप कह सकती हैं, हर सांस में शामिल है।
हाँ बिल्कुल,
बात हो रही है क्रिप्टोग्राफी की,
और इसे समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं पैनोज लॉरिडास की किताब क्रिप्टोग्राफी का। नाम थोड़ा भारी लगता है ना?
हाँ, शब्द तो तकनीकी है पर यकीन मानिए ये जो हमारी ऑनलाइन दुनिया है ना, उसका बिल्कुल बेस है, आधार है।
अच्छा, कैसे?
अरे, सुबह बैंक ऐप खोलने से लेकर दोस्तों को मैसेज भेजने तक, या फिर ऑनलाइन कुछ खरीदना हो, हर जगह ये तकनीक चुपचाप अपना काम कर रही होती है। हमें शायद पता भी नहीं चलता, पर इसे समझे बिना आज की दुनिया को पूरी तरह समझना थोड़ा मुश्किल है सच में।
बिल्कुल, और हमारा इरादा भी यही है कि इस क्रिप्टोग्राफी के ताले को थोड़ा खोला जाए आसान भाषा में।
हाँ, ये सिर्फ कंप्यूटर के जो माहिर लोग हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है जो रोज इंटरनेट यूज करते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं।
हाँ जरूर, शुरू करते हैं लेखक से, पानोज लॉरिडास। ये सिर्फ किताबी बातें करने वाले प्रोफेसर नहीं हैं।
अच्छा?
हाँ, वो एथेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाते तो हैं, लेकिन साथ ही वो ग्रीस के नेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क GRNET जिसे कहते हैं, उससे भी जुड़े रहे हैं।
ओह, तो मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है।
बिल्कुल, उन्हें पता है कि ये तकनीक असल दुनिया में कैसे काम करती है, इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, क्या पेचीदगियाँ हैं,
और शायद यही बात उनके नजरिए को खास बनाती है ना?
हाँ बिल्कुल, वो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि डिजिटल दुनिया में इंसानी बर्ताव, मतलब डिजिटल ह्यूमैनिटीज, इन सब को जोड़कर देखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो मुश्किल तकनीकी बातों को बिना उसकी गहराई या सटीकता खोए आम लोगों के लिए आसान बना देते हैं।
ये तो बहुत जरूरी है आजकल।
हाँ, वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, बल्कि ये हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती है।
सही कहा, और किताब का जो मूल आइडिया है वो तो बहुत ही गहरा है।
हाँ, लॉरिडास कहते हैं कि क्रिप्टोग्राफी सिर्फ डेटा छिपाने का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये तो आधुनिक सभ्यता की नींव का पत्थर है।
बिल्कुल, सोचिए ये हमारे बातचीत करने के तरीके, व्यापार करने के तरीके, हमारी निजी जिंदगी यानी प्राइवेसी, यहाँ तक कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को भी शक्ल देती है।
ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है कि भाई, आज की डिजिटल दुनिया में जहाँ कोई भी जानकारी चुटकी में कॉपी हो सकती है, बीच में रोकी जा सकती है या बदली जा सकती है,
हाँ, जो कि बहुत आसान है, वहाँ हम अपनी बातचीत को निजी कैसे रखें, सुरक्षित कैसे रखें, और ये कैसे पक्का करें कि जो जानकारी मिल रही है वो असली है, बदली हुई नहीं।
ये आज के जमाने का शायद सबसे बड़ा सवाल है।
हाँ,
और लॉरिडास का जवाब बड़ा शानदार है। वो कहते हैं कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसे माहौल में जहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसे वो ट्रस्टलेस माहौल कहते हैं।
ट्रस्टलेस, बिना भरोसे वाला।
हाँ, बिना भरोसे वाला। तो ऐसे माहौल में भरोसा पैदा करने की जो सदियों पुरानी इंसानी जरूरत है, उसका ये सबसे बेहतरीन, सबसे सुरुचिपूर्ण तकनीकी समाधान है।
वाह,
ये वो अनदेखा ढांचा है, वो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके दम पर हम अजनबियों से ऑनलाइन लेनदेन कर पाते हैं, अपनी निजी बातें सुरक्षित रख पाते हैं।
तो किताब का मकसद साफ है, इसे सिर्फ एक्सपर्ट्स की चीज ना मानकर हम सबके लिए डिजिटल दुनिया की एक जरूरी बेसिक जानकारी, एक फंडामेंटल लिटरेसी की तरह पेश करना।
बिल्कुल, बातों को दूसरों से छिपा कर रखने की जरूरत तो शायद उतनी ही पुरानी है जितनी की सभ्यता खुद।
हाँ, राजा महाराजाओं के जमाने से सुनते आए हैं गुप्त संदेशों के बारे में।
बिल्कुल, जूलियस सीजर का ही उदाहरण ले लीजिए।
हाँ,
वो अपने सेनापतियों को गुप्त संदेश भेजने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल करते थे।
क्या तरीका था?
हर अक्षर को वर्णमाला में बस 3 स्थान आगे बढ़ा देना, जैसे ए बन गया डी, बी बन गया ई वगैरह। इसे सीजर सिफर कहते हैं।
ओ, सिंपल।
हाँ सिंपल, और यहीं से हमें क्रिप्टोग्राफी के मूल शब्द मिलते हैं, की यानी वो गुप्त नियम, जैसे यहाँ 3 स्थान आगे।
हाँ,
इनक्रिप्शन यानी संदेश को कोड में बदलना, और डिक्रिप्शन यानी कोड को वापस असली संदेश मिलाना।
लेकिन ये तरीका तो बहुत कच्चा लगता है, कोई भी थोड़ा दिमाग लगाए तो तोड़ लेगा शायद।
बिल्कुल, एक तकनीक है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, उससे इसे तोड़ना बच्चों का खेल था।
फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, वो क्या है?
मतलब ये देखना कि कोड वाले संदेश में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। अंदाजा लग जाता था कि वो अंग्रेजी के ई या टी जैसे आम अक्षरों की जगह इस्तेमाल हुआ होगा, बस थोड़ा हिट एंड ट्रायल और कोड टूट गया।
अच्छा,
और बस यहीं से कोड बनाने वालों और कोड तोड़ने वालों के बीच एक दौड़ शुरू हो गई जो आज तक चल रही है।
हाँ, वो एनिग्मा मशीन वाले कहानी सुनी है दूसरे विश्व युद्ध की।
बिल्कुल, जर्मन एनिग्मा मशीन और उसे तोड़ने वाले एलन ट्यूरिंग और ब्लेचले पार्क की उनकी टीम इसके सबसे मशहूर उदाहरण है। इससे पता चलता है कि क्रिप्टोग्राफी कितनी ज्यादा स्ट्रैटेजिक, कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, और इसी दौड़ ने कहीं ना कहीं आज के कंप्यूटरों की नींव भी रखी।
इस दौड़ में फिर अगला अहम पड़ाव क्या आया?
वो था सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसे सीक्रेट की या गुप्त कुंजी एनक्रिप्शन भी कहते हैं।
सिमेट्रिक मतलब एक जैसा?
हाँ बिल्कुल, इसका फंडा सीधा है। संदेश को लॉक यानी एनक्रिप्ट करने और अनलॉक यानी डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही गुप्त चाबी की का इस्तेमाल होता है। भेजने वाले और पाने वाले दोनों के पास वही सेम चाबी होनी चाहिए।
जैसे घर के ताले की चाबी होती है, एक ही चाबी से खुलता है बंद होता है।
परफेक्ट एनालॉजी, बिल्कुल वही। पुराने विजनियर सिफर जैसे तरीकों से लेके आज के मॉडर्न AES यानी एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड तक।
AES ये नाम सुना है, वाईफाई में होता है शायद।
हाँ, वाईफाई सिक्योरिटी में आपकी हार्ड ड्राइव इंक्रिप्ट करने में, फाइलों को सुरक्षित रखने में हर जगह AES या उसके जैसे सिमेट्रिक एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं। ये सब इसी फंडे पर आधारित है।
तो इसका फायदा क्या है?
इसका सबसे बड़ा फायदा है रफ्तार। ये बहुत तेजी से काम करता है, इसलिए ढेर सारा डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए ये बहुत बढ़िया है।
लेकिन कोई दिक्कत भी होगी?
हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे कहते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, मतलब चाबी को बांटने की समस्या।
अच्छा, वो कैसे?
सोचिए, अगर दो लोग अलग अलग शहरों में बैठे हैं और उन्हें आपस में गुप्त बात करनी है, तो वो ये गुप्त चाबी एक दूसरे तक सुरक्षित रूप से कैसे पहुंचाएं?
हाँ, ये तो बात है, अगर चाबी ही किसी गलत हाथ में पड़ दी
तो सारी सुरक्षा बेकार। अगर चाबी को ऐसे ही भेज दिया और किसी ने बीच में उसे पढ़ लिया, तो फिर इंक्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये सालों तक एक बड़ी सिरदर्दी बनी रही कि दो लोग बिना मिले एक सीक्रेट की पर कैसे सहमत हों।
तो इसका हल कैसे निकला, या फिर कुछ और तरीके भी हैं?
हाँ, एक और जरूरी चीज है जो थोड़ी अलग है, वो है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन।
हैश फंक्शन ये क्या करता है?
ये जानकारी छिपाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के लिए है कि जानकारी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो। इसे कहते हैं डेटा की अखंडता या इंटेग्रिटी बनाए रखना।
ओके, मतलब डेटा बदला तो नहीं गया?
बिल्कुल, हैश फंक्शन किसी भी साइज की फाइल या मैसेज को लेता है, चाहे वो एक शब्द हो या पूरी फिल्म, और उसे एक फिक्स साइज के कोड में बदल देता है। इस कोड को हैश या डाइजेस्ट कहते हैं।
फिक्स्ड साइज का कोड मतलब आउटपुट हमेशा एक जैसा लंबा होगा?
हाँ, चाहे इनपुट कितना भी बड़ा या छोटा हो, इसे आप डेटा का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं।
डिजिटल फिंगरप्रिंट, इंटरेस्टिंग।
और एक अच्छे सिक्योर हैश फंक्शन की दो खास बातें होती हैं। पहला, ये वन वे होता है, मतलब आप हैश से वापस असली डेटा नहीं बना सकते, ये नामुमकिन है।
अच्छा।
दूसरा, ये कोलिजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब ऐसा होना लगभग नामुमकिन है कि दो अलग अलग फाइलों या मैसेजेस का हैश एक जैसा आ जाए।
तो इसके उदाहरण क्या हैं? कहाँ इस्तेमाल होता है ये?
MD5 पुराना था, अब सिक्योर नहीं मानते। SHA-1 भी अब उतना सेफ नहीं। आजकल SHA-256 या SHA-3 ज्यादा इस्तेमाल होते हैं।
और इस्तेमाल
बहुत जगह, जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वेबसाइट अक्सर उसका SHA-256 हैश भी देती है। आप डाउनलोड की हुई फाइल का हैश खुद कैलकुलेट करके मैच कर सकते हैं। अगर मैच हो गया तो पक्का है कि फाइल ओरिजिनल है, डाउनलोड के दौरान बदली नहीं गई।
अच्छा, ये तो काम की चीज है।
और सोचिए, वेबसाइटें आपका पासवर्ड कैसे स्टोर करती हैं? वो आपका पासवर्ड सीधे सेव नहीं करती, वो आपके पासवर्ड का हैश बना के स्टोर करती हैं।
ओह, ताकि अगर उनका डेटाबेस लीक भी हो जाए
तो अटैकर को सीधे पासवर्ड ना मिले, सिर्फ हैश मिले, और हैश से पासवर्ड निकालना नामुमकिन है। तो ये भरोसे का एक और पहलू है कि जो मिला वो वही है जो भेजा गया था, और आपकी सीक्रेट जानकारी सेफ है।
कमाल है। तो हमने सिमेट्रिक देखा, हैशिंग देखी, और फिर वो चाबी बांटने वाली प्रॉब्लम का क्या हुआ?
हाँ, उस पर आते हैं। फिर आया वो मोड़ जिसने क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में, आप कह सकते हैं, क्रांति ला दी।
अच्छा, क्या था वो?
वो था एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, या जिसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं।
पब्लिक की,
ये नाम सुना है?
हाँ, ये वाकई कमाल का आइडिया है। इसमें एक नहीं बल्कि दो चाबियां होती है जो गणितीय रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की।
दो चाबियां?
हाँ, पब्लिक की, जैसा नाम से जाहिर है, आप किसी को भी दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, ईमेल में भेज सकते हैं। लोग इसका इस्तेमाल आपको संदेश भेजने के लिए करते हैं, मतलब संदेश को एनक्रिप्ट करने के लिए।
ओके।
और प्राइवेट की?
प्राइवेट की आप हमेशा गुप्त रखते हैं, किसी को नहीं बताते, सिर्फ आप ही के पास होती है। और उस पब्लिक की से एनक्रिप्ट किए गए संदेश को पढ़ने के लिए यानी डिक्रिप्ट करने के लिए सिर्फ आपकी प्राइवेट की ही काम आती है।
अरे वाह, मतलब चाबी बांटने का झंझट ही खत्म।
बिल्कुल, इसने चाबी बांटने की वो सदियों पुरानी समस्या की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम एकदम सुलझा दी। अब आपको गुप्त चाबी भेजने की जरूरत ही नहीं।
ये तो जबरदस्त है।
हाँ, कोई भी आपकी पब्लिक की इस्तेमाल करके आपको सुरक्षित संदेश भेज सकता है जिसे सिर्फ आप अपनी प्राइवेट की से खोल सकते हैं। डिफी और हेलमैन वो पहले लोग थे जिन्होंने इसका तरीका निकाला था सिर्फ की एक्सचेंज के लिए।
डिफी हेलमैन।
हाँ, और फिर आया RSA एल्गोरिदम रिवेस्ट शमीर एडलमैन के नाम पर, जो पहला पूरा सिस्टम बना जो एनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर दोनों कर सकता था।
RSA भी सुना है, इसके पीछे गणित क्या है? बहुत मुश्किल है।
गणित थोड़ा पेचीदा है। हाँ, ये बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स की गुणनखंड करने की मुश्किल पर आधारित है। मतलब दो बड़े प्राइम नंबर को गुणा करना आसान है, लेकिन गुणनफल से वापस वो दो प्राइम नंबर पता करना बहुत मुश्किल है अगर नंबर बहुत बड़े हों।
ओह, ओके।
पर मूल आइडिया एक ट्रैपडोर फंक्शन जैसा है। मतलब एक तरफ जाना, जैसे पब्लिक की से एनक्रिप्ट करना आसान है, पर बिना गुप्त दरवाजे यानी प्राइवेट की के वापस आना यानी डिक्रिप्ट करना लगभग नामुमकिन।
इसने तो इंटरनेट पर सुरक्षित बातचीत का दरवाजा ही खोल दिया होगा।
बिल्कुल, ये इंटरनेट और ई कॉमर्स के लिए एक गेम चेंजर था।
और इस पब्लिक प्राइवेट की जोड़ी का जादू सिर्फ संदेश छिपाने तक ही सीमित नहीं है, आपने कहा था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका एक और जबरदस्त इस्तेमाल है डिजिटल सिग्नेचर में।
डिजिटल सिग्नेचर, जैसे हम कागज पर साइन करते हैं?
हाँ, कुछ वैसा ही, पर उससे कहीं ज्यादा सिक्योर और पावरफुल। ये दो चीजें पक्की करता है, पहली प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन यानी संदेश किसने भेजा है, और दूसरी गैर अस्वीकारण नॉन रिप्यूडिएशन यानी भेजने वाला बाद में मुकर न सके कि ये संदेश मैंने नहीं भेजा।
अच्छा, ये कैसे काम करता है?
इसमें भेजने वाला अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करके संदेश पर या ज्यादातर उसके हैश पर एक डिजिटल ठप्पा लगाता है, एक तरह से साइन करता है।
प्राइवेट की से?
हाँ, प्राइवेट की से। फिर कोई भी उस भेजने वाले की पब्लिक की का इस्तेमाल करके ये जांच सकता है कि एक, क्या यह ठप्पा वाकई उसी की प्राइवेट की से लगा है। इससे भेजने वाले की पहचान पक्की हो जाती है। ऑटो, क्या संदेश में ठप्पा लगने के बाद कोई बदलाव हुआ है? क्योंकि अगर संदेश बदला तो हैश बदल जाएगा और सिग्नेचर मैच नहीं करेगा, इससे डेटा की अखंडता पक्की होती है।
तो मतलब भेजने वाला ये नहीं कह सकता कि ये मैंने नहीं भेजा था?
एग्जैक्टली। सोचिए, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी दस्तावेज, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इन सब के लिए ये कितना जरूरी है। ये हमारे हाथ वाले सिग्नेचर का डिजिटल और ज्यादा सुरक्षित रूप है।
ये तो वाकई बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है मेरे मन में। आपने कहा कि पब्लिक की कोई भी बांट सकता है, तो मुझे किसी की पब्लिक की मिली पर मैं कैसे मान लूं कि ये वाकई उसी की है जिसका वो दावा कर रहा है? क्या पता कोई धोखेबाज मुझे किसी बैंक की नकली पब्लिक की दे दे?
बहुत अच्छा सवाल है, ये एक असली प्रॉब्लम है। सिर्फ पब्लिक की होना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि वो किसकी है। और इस भरोसे की कड़ी को छोड़ने के लिए आता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी PKI।
PKI, ये क्या है? कोई संस्था है?
एक पूरा सिस्टम है, इसमें कुछ बहुत भरोसेमंद कंपनियां होती हैं जिन्हें सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहते हैं। नाम सुने होंगे शायद, जैसे VeriSign, DigiCert, Let's Encrypt।
हाँ, सुने।
ये कंपनियां डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। ये सर्टिफिकेट एक तरह का डिजिटल पहचान पत्र है। ये क्या करता है कि ये एक पब्लिक की को किसी व्यक्ति या संस्था जैसे गूगल या आपकी बैंक की वेबसाइट की पहचान से जोड़ता है।
ओके, ID कार्ड जैसा।
हाँ, और इस सर्टिफिकेट पर उस CA का अपना डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसकी अपनी प्राइवेट की से किया हुआ।
अच्छा, तो CA गारंटी लेता है एक तरह से।
बिल्कुल। अब हमारे कंप्यूटर और ब्राउजर में इन बड़ी भरोसेमंद CAs की पब्लिक की पहले से मौजूद होती हैं।
पहले से?
हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउजर के साथ ही आती हैं। तो जब आप किसी HTTPS वाली वेबसाइट पर जाते हैं तो वो वेबसाइट अपना डिजिटल सर्टिफिकेट आपके ब्राउजर को दिखाती है। आपका ब्राउजर उस सर्टिफिकेट पर लगी CA की डिजिटल सिग्नेचर को अपने पास मौजूद उस CA की पब्लिक की से जांचता है। अगर सिग्नेचर सही है तो ब्राउजर को यकीन हो जाता है कि यह सर्टिफिकेट असली है और यह वेबसाइट वही है जिसका यह दावा कर रही है।
ओह, तो यहीं से बनती है वो भरोसे की चेन।
चेन ऑफ ट्रस्ट।
एग्जैक्टली।
और तभी हमें ब्राउजर में वो हरे रंग का ताला या पेडलॉक आइकन दिखता है। वो इसी PKI सिस्टम के काम करने का सबूत है।
कमाल है। तो अब जरा इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं एक रियल लाइफ उदाहरण में।
जी।
मान लीजिए मैं अपनी बैंक की वेबसाइट खोलती हूँ जो HTTPS से शुरू होती है।
जी।
तो पर्दे के पीछे क्या क्या होता है?
हाँ, ये एक अच्छा तरीका है समझने का। जब आप HTTPS वाली साइट पर जाते हैं तो पर्दे के पीछे एक तरह का क्रिप्टोग्राफिक डांस होता है जिसे TLS या SSL हैंडशेक कहते हैं।
TLS, SSL, ये भी सुना है।
हाँ, इसमें कई चीजें एक साथ होती हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं।
जैसे
पहला, पहचान की पुष्टि, ऑथेंटिकेशन। आपका ब्राउजर PKI का इस्तेमाल करके बैंक के सर्वर के सर्टिफिकेट को जांचता है, पक्का करता है कि आप असली बैंक से ही बात कर रहे हैं, किसी फ्रॉड साइट से नहीं।
ठीक है।
दूसरा, चाबी का लेन देन, की एक्सचेंज। फिर ब्राउजर और बैंक का सर्वर, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जैसे RSA या Diffie-Hellman पर आधारित तरीके का इस्तेमाल करके सिर्फ उस एक सेशन के लिए एक सीक्रेट चाबी बनाते हैं जिस पर दोनों सहमत होते हैं। ये चाबी रास्ते में कोई पढ़ नहीं सकता।
ओके, एक टेम्पररी सीक्रेट चाबी बन गई।
हाँ। तीसरा, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इस सीक्रेट चाबी का इस्तेमाल करके आपके और बैंक के बीच का सारा डेटा, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, अकाउंट नंबर, सब कुछ तेज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जैसे AES से एनक्रिप्ट किया जाता है,
ताकि कोई बीच में पढ़ ना सके।
बिल्कुल। और चौथा, अखंडता, इंटेग्रिटी। साथ ही हर मैसेज के साथ एक हैश जिसे MAC, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कहते हैं, भी भेजा जाता है जो उसी सीक्रेट चाबी से बनता है। इससे ये पक्का होता है कि डेटा रास्ते में बदला नहीं गया है। अगर जरा सा भी बदला तो हैश मैच नहीं करेगा।
वाह, मतलब ये चारों चीजें, पहचान, चाबी बनाना, डेटा छिपाना और डेटा की सच्चाई, सब एक साथ हो रही हैं।
हाँ, तो मुद्दे की बात यह है कि हमारी ऑनलाइन सुरक्षा किसी एक जादुई अल्गोरिथम पर नहीं टिकी है, ये एक पूरे प्रोटोकॉल पर, यानी नियमों और तरीकों के एक सेट पर टिकी है। ये अलग अलग क्रिप्टोग्राफिक औजारों की एक परत दर परत सुरक्षा दीवार है जो मिलकर हमें सुरक्षित रखती है।
ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है या आगे भी कुछ है?
नई कहानी तो चलती रहती है। आजकल हम क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सुनते हैं, जैसे बिटकॉइन।
हाँ, बिटकॉइन।
वो भी क्रिप्टोग्राफी पर ही चलता है। बिल्कुल, वो असल में क्रिप्टोग्राफी के इन्हीं पुराने हथियारों जैसे हैश फंक्शन और डिजिटल सिग्नेचर का ही एक बहुत ही क्लेवर एक नया इस्तेमाल है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां बिना किसी सेंट्रल बैंक या अथॉरिटी के भी लोग आपस में सुरक्षित तरीके से लेन देन कर सकते हैं।
इंटरेस्टिंग।
लेकिन आगे एक बड़ी चुनौती भी दिख रही है।
चुनौती? कैसी चुनौती?
क्वांटम कंप्यूटर।
क्वांटम कंप्यूटिंग, हाँ, इसके बारे में भी काफी चर्चा है।
माना जाता है कि अगर ये ताकतवर कंप्यूटर हकीकत बन गए तो ये आज के कई एसिमेट्रिक तरीकों, खासकर RSA जैसे जो बड़ी संख्याओं के गुणनखंड पे आधारित हैं, उन्हें बहुत तेजी से तोड़ सकते हैं।
ओ, मतलब आज की ऑनलाइन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
हाँ, पड़ सकती है। इसीलिए दुनिया भर में वैज्ञानिक और क्रिप्टोग्राफर्स पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC पर जोर शोर से काम कर रहे हैं।
पोस्ट क्वांटम मतलब क्वांटम के बाद वाली।
हाँ, यानी ऐसे नए क्रिप्टोग्राफिक तरीके खोजे जा रहे हैं जो उन गणितीय समस्याओं पर आधारित हों जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी आसानी से हल न कर सकें। ये एक बिल्कुल नई दौड़ है।
मतलब कोड बनाने और तोड़ने वालों की ये जंग आगे भी जारी रहने वाली है।
हमेशा, ये कभी खत्म नहीं होती।
तो इस पूरी बातचीत से अगर कुछ मोटी बातें, कुछ की टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी बात यह है, क्रिप्टोग्राफी सिर्फ छुपाने का नहीं बल्कि भरोसा बनाने का विज्ञान है। इसका असली काम एक ऐसी डिजिटल दुनिया में विश्वास पैदा करना है जहां सीधे तौर पर भरोसा करना मुश्किल है।
हाँ, ये बात मुझे बहुत अहम लगी, ट्रस्ट बनाना।
हाँ, ये पहचान, ऑथेंटिकेशन, डेटा की सच्चाई, इंटेग्रिटी और अपनी बात से न मुकरना, नॉन रेपुटिएशन, इन सबका यकीन दिलाती है।
दूसरी बात,
एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यानी पब्लिक की वाली चीज एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसने चाबी बांटने की सदियों पुरानी मुश्किल को हल किया और आज के ग्लोबल इंटरनेट और e-commerce को मुमकिन बनाया। इसके बिना शायद आज की डिजिटल दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी है।
सही। तीसरी बात ये कि ये हमारे डिजिटल जीवन की वो अदृश्य नींव है जिसके बिना कुछ भी नहीं टिक सकता।
बिल्कुल, जैसे बिजली के बिना घर नहीं चलता, वैसे ही क्रिप्टोग्राफी के बिना हमारी ऑनलाइन जिंदगी ठप हो जाएगी। चाहे वो UPI पेमेंट हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, सिक्योर मैसेजिंग हो या आधार से जुड़ा कोई काम, कहीं ना कहीं ये तकनीक मौजूद है, भले हमें दिखे ना।
चौथी बात शायद ये है कि सुरक्षा एक अकेली चीज नहीं, एक पूरा सिस्टम है।
हाँ, परफेक्ट। जैसा हमने HTTPS TLS में देखा, असली मजबूती तब आती है जब अलग अलग तरीके, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, हैशिंग, PKI, सब मिलकर सही ढंग से काम करते हैं। एक परत दूसरी परत को सपोर्ट करती है।
जैसे घर की सुरक्षा के लिए मजबूत दरवाजा भी चाहिए, खिड़की पर ग्रिल भी, अच्छा ताला भी और शायद एक अलार्म सिस्टम भी।
बिल्कुल सही उदाहरण। और पांचवी बात जो अभी हमने की, ये एक लगातार चलने वाली दौड़ है, कोड बनाने वाले और कोड तोड़ने वाले। जैसे ही सुरक्षा का नया तरीका आता है, उसे तोड़ने की कोशिशें भी शुरू हो जाती हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग इस दौड़ का अगला बड़ा मैदान है, जो हमें सुरक्षा के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है।
किताब में पैनोस लॉरिडास ने कई ऐसी बातें कही हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ खास बातें जो आपको याद आ रही हों?
हाँ, कई हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, क्रिप्टोग्राफी सिर्फ रहस्य छिपाने के बारे में नहीं है, ये एक भरोसे रहित दुनिया में भरोसा कायम करने के बारे में है। मतलब इसका असली मकसद सिर्फ सीक्रेसी नहीं बल्कि ट्रस्ट बनाना है।
ये बात बार बार सामने आ रही है, ट्रस्ट।
हाँ, एक और जबरदस्त बात, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का आविष्कार डिजिटल संचार के लिए उतना ही क्रांतिकारी था जितना ज्ञान के प्रसार के लिए प्रिंटिंग प्रेस।
वाह, प्रिंटिंग प्रेस से तुलना, ये बताता है कि ये खोज कितनी बड़ी थी। इसने पूरी डिजिटल क्रांति को संभव बनाया।
बिल्कुल। और ये भी कि आपकी ऑनलाइन सुरक्षा किसी एक जादुई एल्गोरिथम से नहीं बल्कि प्रोटोकॉल की एक सावधानीपूर्वक परत दर परत प्रणाली द्वारा सुरक्षित है। ये याद दिलाता है कि सुरक्षा एक कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई सिल्वर बुलेट नहीं है।
एक विचार प्राइवेसी पर भी है शायद।
हाँ, बहुत जरूरी। वो कहते हैं, गोपनीयता कुछ छिपाने के बारे में नहीं है, ये व्यक्तिगत विचार और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए जगह बनाए रखने के बारे में है।
मतलब प्राइवेसी सिर्फ अपनी निजी बातें छुपाना नहीं है, बल्कि आज़ादी से सोचने और समाज में अपनी बात रखने, डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने के लिए भी जरूरी है।
बिल्कुल, ये एक ज्यादा गहरा मतलब है प्राइवेसी का।
तो इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इस जानकारी का क्या करें?
देखिए, पहली बात तो ये कि अब हम वेब ब्राउजर में उस ताले HTTPS का मतलब बेहतर समझते हैं।
हाँ,
और ये भी जानते हैं कि बिना ताले वाली HTTP साइट पर अपनी सेंसिटिव जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल क्यों नहीं डालनी चाहिए।
बिल्कुल, सावधानी जरूरी है।
दूसरी, हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन की कदर कर सकते हैं। जब व्हाट्सएप या सिग्नल जैसे ऐप कहते हैं कि आपके मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, E2E है,
हाँ, वो लिखा आता है,
तो हमें पता है कि इसका मतलब है कि भेजने और पाने वाले के सिवा कोई तीसरा, यहां तक कि वो कंपनी खुद भी, उन मैसेजेस को नहीं पढ़ सकती। ये हमारी बातचीत की प्राइवेसी के लिए बहुत जरूरी है।
तीसरी बात, शायद पासवर्ड्स को लेकर।
हाँ, अब हमें समझ आता है कि हर वेबसाइट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड क्यों जरूरी है।
क्यों? हैशिंग से कैसे जुड़ा है ये?
क्योंकि अगर एक वेबसाइट का डेटाबेस लीक होता है और आपका पासवर्ड का हैश लीक होता है, तो हैकर्स उसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल किया है, तो आपकी सारी ऑनलाइन प्रोफाइल खतरे में पड़ जाती हैं। अलग पासवर्ड मतलब ज्यादा सुरक्षा।
बिल्कुल। और हम क्रिप्टोकरेंसी जैसी नई चीजों को भी शायद थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं कि वो बिना बैंक के कैसे काम करने का दावा करती हैं।
हाँ, कम से कम ये पता चलता है कि उनके पीछे भी क्रिप्टोग्राफी के यही सिद्धांत काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जानकारी हमें डिजिटल दुनिया में ज्यादा समझदार और जागरूक नागरिक बनाती है।
हम कंपनियों के सुरक्षा के दावों को बेहतर परख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं।
सही कहा।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी बात या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि ये तकनीक कितनी ज्यादा फंडामेंटल है, कितनी जरूरी है हमारी आज की जिंदगी के लिए। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में कितना कम जानते हैं। ये लगभग हवा की तरह है, अदृश्य, पर जिसके बिना गुजारा नहीं।
हाँ, ये बात तो है।
और ये जानना भी हैरान करता है कि हमारे हर क्लिक, हर ऑनलाइन एक्शन के पीछे कितनी गहरी सोच, कितना कॉम्प्लेक्स गणित और इंजीनियरिंग छिपी हुई है।
और मेरे लिए, मुझे लगता है, सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू ये था कि कैसे गणित के सिद्धांत, जो सुनने में बड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, वो असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के काम आते हैं।
हाँ,
जैसे कि उन दो लोगों के बीच भरोसा कैसे कायम किया जाए जो कभी मिले ही नहीं। ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का आइडिया वाकई कमाल का है, जिसने सच में हमारी दुनिया बदल दी।
बिल्कुल। एक सवाल मेरे मन में आता है अब, जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, हर चीज ऑनलाइन जा रही है।
हाँ,
तो क्या क्रिप्टोग्राफी की बुनियादी समझ रखना, बेसिक लिटरेसी होना, उतना ही जरूरी हो जाएगा जितना आज पढ़ना लिखना जानना है? क्या ये भविष्य की एक नई जरूरी साक्षरता होगी? सोचने वाली बात है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।